आमाल 19वां बाब। और जब उपुलुस कुरिन्थुस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाके से गुजरकर इफसुस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा,
क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स पाया?
उन्होंने उससे कहा कि
हमने तो सुना भी नहीं कि रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है।
उसने कहा,
बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया?
उन्होंने कहा,
योहन्ना का बपतिस्मा।
पौलुस ने कहा,
योहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यसू पर ईमान लाना।
उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यसू के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबुवत करने लगे और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। फिर वो इबादत खाने में जाकर 3 महीने तक दिलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता और लोगों को कायल करता रहा। लेकिन जब बाज सख्त दिल और नाफरमान हो गए, बल्कि लोगों के सामने इस तरीक को बुरा कहने लगे, तो उसने उनसे किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया और हर रोज तुरुन्नस के मदरसे में बहस किया करता था। 2 बरस तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वालों, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने खुदावंद का कलाम सुना। और खुदा पौलुस के हाथों से खास खास मौजज़े दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। मगर बाज़ यहूदियों ने, जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया कि जिन में बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यसू का नाम ये कहकर फूकें कि
जिस यसू की पौलुस मुनादी करता है मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ।
और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि
यीशु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस से भी वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो?
और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। और ये बात इफसुस के सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई। पर सब पर खौफ छा गया और खुदावंद यसू के नाम की बुजुर्गी हुई। और जो ईमान लाए थे उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया। और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी। और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए की निकली। इसी तरह खुदावंद का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। जब ये हो चुका तो पौलुस ने जी में ठाना कि मकदूनिया और अखिया से होकर यरूशलेम को जाऊंगा और कहा कि
वहां जाने के बाद मुझे रोमा भी देखना जरूर है।
बस अपने खिदमतगुजारों में से 2 शख्स यानी तिमुथियुस और इरास्तुस को मकदूनिया में भेजकर आप कुछ अरसा आसिया में रहा। उस वक्त इस तरीक की बाबत बड़ा फसाद उठा, क्योंकि दिमित्रियुस नाम एक सुनार था जो अर्तमिस के रूपहले मंदिर बनवाकर उस पेशे वालों को बहुत काम दिलवा देता था। उसने उनको और उनके मुतालिक और पेशे वालों को जमा करके कहा,
ऐ लोगो, तुम जानते हो कि हमारी आसूदगी इसी काम की बदौलत है, और तुम देखते और सुनते हो कि सिर्फ इफिसस ही में नहीं बल्कि तकरीबन तमाम आसिया में इस पौलुस ने बहुत से लोगों को ये कहकर कायल और गुमराह कर दिया है कि जो हाथ के बनाए हुए हैं वो खुदा नहीं है। पर सिर्फ यही खतरा नहीं कि हमारा पेशा बेकद्र हो जाएगा, बल्कि बड़ी देवी अर्तमिस का मंदिर भी नाचीज हो जाएगा, और जिसे तमाम आसिया और सारी दुनिया पूजती है खुद उसकी भी अजमत जाती रहेगी।
वो ये सुनकर कहर से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि और तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोगों ने गयूस और अरिस्तर्खुस मकदूनिया वालों को, जो पौलुस के हमसफर थे, पकड़ लिया और एक दिल होकर तमाशागाह को दौड़े। जब पौलुस ने मजमे में जाना चाहा तो शागिर्दों ने जाने न दिया, और आसिया के हाकिमों में से उसके बास दोस्तों ने आदमी भेजकर उसकी मिन्नत की कि तमाशागाह में जाने की जुरत न करना। और बाज कुछ चिल्लाए और बाज कुछ, क्योंकि मजलिस दरहम बरहम हो गई थी और अक्सर लोगों को ये भी खबर न थी कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर उन्होंने इस्कंदर को, जिसे यहूदी पेश करते थे, भीड़ में से निकालकर आगे कर दिया, और इस्कंदर ने हाथ से इशारा करके मजमे के सामने उज्र बयान करना चाहा। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये यहूदी है तो सब हम आवाज होकर कोई दो घंटे तक चिल्लाते रहे के फिर शहर के मुहर्रर ने लोगों को ठंडा करके कहा,
ऐ इफ्सियो, कौन सा आदमी नहीं जानता कि इफ्सियो का शहर बड़ी देवी अर्तमिस के मंदिर और उस मूरत का मुहाफिज है जो ज़ियूस की तरफ से गिरी थी। बस जब कोई इन बातों के खिलाफ नहीं कह सकता तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो और बेसोचे कुछ ना करो, क्योंकि ये लोग जिनको तुम यहाँ लाए हो ना मंदिर को लूटने वाले हैं ना हमारी देवी की बदगोई करने वाले। बस अगर दिमित्रियुस और उसके हम पेशा किसी पर दावा रखते हों तो अदालत खुली है और सूबेदार मौजूद हैं, एक दूसरे पर नालिश करें। और अगर तुम किसी और अमर की तहकीकात चाहते हो तो बाज़ाब्ता मजलिस में फैसला होगा, क्योंकि आज के बलवे के सबब से हमें अपने ऊपर नालिश होने का अंदेशा है, इसलिए कि इसकी कोई वजह नहीं है और इस सूरत में हम इस हंगामे की जवाबदेही ना कर सकेंगे।
ये कहकर उसने मजलिस को बर्खास्त किया।